लेक्चर नंबर एक। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री निमिचंद जी ने गोमरसार ग्रंथ की रचना की है। उसमें जीव कांड कर्म कांड तो रहेगी, फिर से उन्होंने लब्धि सार, सपना सार, त्रिलोक सार, द्रव्य संग्रह अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहते मालूम है आपको? ये लौकिक में चक्रवर्ती किसको कहते हैं? छह खंड को जीतने वाले। तो हमारी जो मूल आगम रचना हुई है षटखंड, षटखंडागम जिसको कहेंगे, तो उसके जो ज्ञाता है ऐसे आचार्यों को यहाँ सिद्धांत चक्रवर्ती कहने में आता है। तो उन्होंने इन ग्रंथों की रचना क्यों की? एक तो जो भगवान महावीर से जो धारा चली आ रही थी, गणधरों ने जिसकी रचना की थी, और अपने परंपरा के अनुसार ये जो आगम ज्ञान हमें प्राप्त था, तो निमिचंद जी ने ये क्यों ग्रंथ लिखे? तो उसका उत्तर है, चामुंडराय का नाम तो मालूम है सबको, हाँ क्या किया उन्होंने? हाँ, वो बाहुबली महाकाय जो मूर्ति का निर्माण कराया उन्होंने, गोमटेश्वर जो श्रवण बेलगोला में आपके वहाँ है ना, तो उनका एक ही कार्य मालूम है हमको। वे तो तत्वज्ञान के बहुत रसिक भी थे, ज्ञाता भी थे, और कर्णयोग के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा आचार्य जी के, कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि जो जीव पद होते हैं ना, देखो अभी ये वाक्य का अर्थ भी नहीं समझ में आ जाएगा, अभी अपने समझेंगे उसको। उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वी कायिकादि 41 जीव पदों में नाम कर्म के सत्व का निरूपण कैसे करना, क्या अर्थ समझा? कुछ नहीं समझे। इसको केवल उन्होंने उत्तर नहीं दिया, वो तो एक दो वाक्यों में उत्तर दे सकते थे, इसके लिए उन्होंने पूरा जीव कांड लिखा, कर्म कांड लिखा, यानी सब गोमट सार के थे, और उसमें मैं पूरी जीवों की सारी मार्गणाएं वगैरह, गुणस्थान मार्गणा तो बता ही दिए जीव कांड में, और कर्म कांड में कर्म के बिल्कुल नाम से लेकर सभी विस्तार से वर्णन कर बाद में यह जीव पदों की उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने करुणापूर्वक तो इतनी रचना कर दी, स्वयं चामुंडराय जी ने इसके ऊपर कर्नाटक भाषा में टीका लिखी उन ग्रंथों पर। उसके बाद एक केशव वर्णी जी हुए, उन्होंने कन्नड़ लिपि में संस्कृत भाषा में टीका लिखी, उसी का नाम है जीव तत्व प्रतिटीका, जो गोमरसार की टीका है। टोडरमल जी रहने वाले जयपुर के, और उन्होंने कन्नड़ लिपि में और संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ पढ़े, स्वयं उसका अभ्यास किया, और उसको ढूंढारी भाषा में, उस समय की जो देशी भाषा थी उसमें उन्होंने उसका बहुत सारा विस्तार सहित वर्णन कर दिया। क्योंकि मूल संस्कृत टीका में जहाँ वहाँ संदृष्टि यानी वो चिन्हात्मक गणित भी थे, बहुत कुछ कठिन जो गणित लगते थे तो देखकर ही जीव घबराते थे, तो उसको उन्होंने अलग से उसके एक अधिकार बनाए और सरल भाषा में सभी जन जन समझे, इस तरह से उन्होंने उसकी रचना की। उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्म कांड, और सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार सपनासार। ये टोडरमल जी की बहुत अपूर्व रचना है, और ये उन्होंने हम आप जैसे जन जन सामान्य जनों के लिए ये बातें लिखी है, और उसको लिखने की प्रेरणा भी बहुत अधिक पद्धति से उन्होंने इसमें दी है। इसमें जो पीठिका है वो पूरी पीठिका पढ़ने योग्य है। उसमें से कुछ अंश मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि ये इसका अभ्यास करने के लिए उन्होंने बारंबार जीवों को प्रेरणा दी है कि इसका अभ्यास क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसको कठिन जानकर पहले लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। ये समझते हैं कि हमारी बुद्धि के बाहर की चीज़ है। जो नए नए कुछ अन्वेषण होते हैं उसके ऐसा नहीं लगता कि मोबाइल और ये जो लैपटॉप है हमारी बुद्धि के बाहर, ऐसा कभी नहीं लगता है ना। उसको जानने की जिज्ञासा है तो हमारे डेढ़ दो तीन साल के बच्चे भी उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। हमारे बुढ़ों को कुछ नहीं समझता, उनको सब कुछ समझता है। तो जो जिस संबंधी अपनी जिज्ञासा होती है वो विषय जरूर समझ में आ जाता है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं समझ, यहाँ से केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। तो ये तो शुद्ध ज्ञानियों ने अपने लिए जो बातें लिखी वो क्यों नहीं समझेंगे, जरूर समझेंगे। पहले हम लॉक करके रखते कि हम कुछ नहीं समझेंगे, ऐसी कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ जो ये जो भंडारी भाषा में जो ग्रंथ थे वो यहाँ आपके हाथ में जो है वो हिंदी भाषा में उसका अनुवाद अपने यहाँ हुआ है। तो उसमें प्रोग्रामल जी साहब, हम तो सारे अध्यात्म के अभ्यासु हैं, कितने यहाँ विद्वान भी बैठे हैं, प्रवचनकार भी है, और फिर भी कोई तो हमें अनुमोदना देने के लिए आए हैं, है ना। हमारे यहाँ तो अभ्यासु भी है, हमारे रोज के स्वाध्याय में भी धवला जयधवला महाधवला ये सब ग्रंथों का अभ्यासु भी यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठे तो हम सब कुछ जानते हैं, हम साथ में मिलकर अपना ये स्वाध्याय चलेगा यहाँ। तो ये द्रव्यान योग के हम तो बहुत अभ्यासु है। तो यहाँ द्रव्यान योग का जो पक्षपाती, पक्षपात समझते हैं, देखो भगवान की वाणी में चारों ही अनुयोगों का हमें उपदेश मिला है। चारों अनुयोगों के नाम तो मालूम है ना, कौन से है? हाँ, प्रथमानुयोग है, चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है, कर्णानुयोग है। और वो चारों ही अनुयोग उतने ही कार्यकारी है, और सभी अनुयोगों का तात्पर्य है वितरांगता। हर एक अनुयोग की भाषा जुदी जुदी होती है, कथन पद्धति जुदी होती है। प्रथमानुयोग में तो जो क्या कुछ हुआ था ऑलरेडी वो बताएंगे, कोई राजा था या चक्रवर्ती था, उसने उसके पुण्य पाप के क्या क्या उसको फल मिले, उसकी जो अलग अलग कहानियां बताएंगे। फिर बाद में उन्होंने वैराग्य पाकर फिर मुनि दीक्षा अंगीकार की, फिर वो किस तरह से उन्होंने पुरुषार्थ किया और मोक्ष प्राप्त किया। ये सब था की बात है, प्रथमानुयोग में जो घटित हुई थी वो बातें बताई। चरणानुयोग में आचरण की मुख्यता से बात, मुख्यता से कथन आता है कि ऐसा करना चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, ये चाहिए वाली बात है। वो चरणानुयोग की भाषा है, कथन पद्धति है। उसमें भी ये जो कर्णानुयोग के नियम है, कहाँ कौन से जीव रहते हैं, कहाँ कितनी मात्रा में रहते हैं, उसके पीछे का वो रहस्य है। अब द्रव्यानुयोग में तो छह द्रव्यों का वर्णन है, उसके गुणों का, उसके पर्यायों का, परिणमन व्यवस्था का। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, बिल्कुल द्रव्य की स्वतंत्रता का उद्घोष है। अभी जो आपने गुरुदेव के प्रवचन में सुना है, तो पर को जानता है तो उसकी भी अपेक्षा नहीं, वो स्वयं में सब कुछ परिपूर्ण है। ये द्रव्यानुयोग की भाषा है, कथन पद्धति, वो वस्तु सिद्धांत है, इसके तो समझना आवश्यक है ही है। अब कर्णानुयोग में क्या है, जीव के परिणामों की और कर्मों की अवस्थाओं का सूक्ष्म वर्णन आता है, उसका निमित्तपना बनता है, निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, और उसके निमित्तों की तरफ से हम जीव के ही परिणामों को बताना है, बताना तो जीव के परिणामों का है, फिर भी इनका अनादि से एक दूसरे से कैसा संबंध है और उसमें क्या क्या बातें बनती है उसकी यहाँ चर्चा की जाती है। तो यहाँ तो जीवों को ऐसा ही लगता है कि हमें तो आत्मानुभव करना है और अपने में स्थित रहना है, तो ये बेकार की बातें क्यों जाने, क्या लगता है उसको, बेकार की बातें। जिस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का हम अपने रोज दैनंदिन स्वाध्याय में लेते हैं, वो किसने लिखा था, तो उन्होंने पहले ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका तीनों लिखे, त्रिलोकसार भी लिखा है उन्होंने और भी कुछ लिखे हैं। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले लिखा, ये तो अंतिम थे क्योंकि अधूरी रही ना रचना, तो वो सारे पहले ही रचे थे। तो उन्होंने तो इतनी विस्तार से ये बातें बताई हैं, और ये भी वेद विज्ञान के लिए ही कार्यकारी है। वो स्वयं यहाँ लिखते हैं कि द्रव्यानुयोग का पक्षपाती पूछता है हमें कि इस शास्त्र में ने कर्णानुयोग के ग्रंथों में गुणस्थानादि रूप विशेष, हाँ जो जिनके पास पुस्तक है ना, पेज नंबर है 10 पीठिका का, कर्मकांड जो पहली पुस्तक आपने लाई है, पीठिका का पेज नंबर 10 पीठिका की बात है। उसमें द्रव्यानियोग का पक्षपाती पूछता है, कहता है कि इस शास्त्र में तो जीव के गुणस्थानादि रूप विशेष, विशेष यानी उसके विस्तार डिटेल्स, और कर्म के विशेष इनका वर्णन है, तो उसको जानने से अनेक विकल्प तरंग उठते हैं, क्योंकि विकल्पों से रहित होना चाहता है ना ये, और कुछ सिद्धि तो है ही नहीं है, इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना और स्वपर का भेद विज्ञान करना इतना ही कार्यकारी है, अथवा इनके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र उनका ही अभ्यास करना योग्य है। तो उसको पंडित जी स्वयं उत्तर देते हैं, वो कहते हैं हे सूक्ष्माभास बुद्धि, तुझे एक एक नया नया विरुद्ध देते हैं, तुझे सूक्ष्म का आभास हो गया है, तूने कहा वो सत्य। ये पंडित टोडोनो जी की हमेशा की स्टाइल आपने देखा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी, प्रश्न करता के पहले तो कहते तेरा सत्य परंतु लगाते रहे खिलाड़ी, परंतु अपनी अवस्था देखना, यदि स्वरूपानुभव में और भेद विज्ञान में उपयोग निरंतर रहता है तो अन्य विकल्प क्यों करने हैं, बस 24 घंटे रह जाना, अभी 24 घंटे क्या कुछ सेकंडों में केवल ज्ञान हो जाता है, हम मानते हैं ना भैया 48 मिनट में अंतरंग में स्थिर रहे तो केवल ज्ञान, अरे इतना लंबा समय किसी को नहीं लगता है, ये हमारी कुछ ऐसी गलत भ्रमणाएं हैं चलती है, वहां ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होकर संतुष्ट होना, परंतु निचली अवस्था में वहां निरंतर उपयोग नहीं रहता, उपयोग ने अपना ज्ञान उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, इधर उधर भटकता है, ये तो सबके अनुभव की बात है, टीवी के सामने बैठते हो और वहां कोई सीरियल चल रही, जो कुछ चल रहा है, न्यूज चल रहा है, बीच में क्या होता है ब्रेक आता है, एडवर्टाइजमेंट जो अन्य कुछ चलती है तो क्या करते हैं, हाथ में रिमोट लेकर क्या करते हैं, क्यों, अरे इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उपयोग जो है ना वो भ्रमता रहता है, उसको नया नया अवलंबन चाहिए होता है, जानो तो सही वहां क्या चल रहा है ना। तो कहते उपयोग अनेक अवलंबन को चाहता है, इसलिए जिस काल में वहां अपने में उपयोग नहीं रहता है तब गुणस्थान आदि विशेष जानने का अभ्यास करना, नहीं तो क्या करेंगे, तो वहां क्या स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से शेयर कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं, हाँ वो राजनीति में कौन क्या कर रहा है, उसकी तो न्यूज चैनल चलेंगे, उसको देखते रहेंगे और क्या करेंगे। अब कोई कहते कि अध्यात्म शास्त्र का ही अभ्यास करना, परंतु विशेष जाने बिना सामान्य का जानना स्पष्ट नहीं होता, विशेष यानी डिटेल्स, जिस बात को हम विशेषता से जानेंगे, सूक्ष्मता से जानेंगे, तो उसमें हमें भेद ज्ञान करना और आसान हो जाता है, इसलिए भी इसको पढ़ना, ये बहुत विस्तार से हम उसमें नहीं जानेंगे जाएंगे आगे। तो यहाँ ये भी प्रश्न पूछा था कि जो मुनि दीक्षा भी धारण करते हैं, कर्णानियों का अभ्यास भी करते हैं और अभ्यास, और उनके भी सम्मिलित तो नहीं होता ऐसा शास्त्र में आता है कि उन्होंने सब सर्व आगम धर भले पुनिना, इतना शास्त्रों का अभ्यास भी किया उन्होंने, मुनि दीक्षा भी की, फिर भी द्रव्यलिंगी होकर वो ग्रेवे तक भी गए, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों, ऐसा सब पूछते हैं, इसलिए कर्णानुग का अभ्यास हम नहीं करेंगे। तो कहते उनकी मान्यता में भूल है ना, शुभ भाव को उसने मोक्ष का मार्ग मान लिया है और उससे अपना कल्याण होगा ऐसी बातें मानी है, अभी इसलिए कहते हैं कि यहाँ इसका अभ्यास करना। देखो ये आप स्वयं पढ़ लेना, बाद में मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। कोई ऐसे भी पूछते कि हमारे इसमें बुद्धि नहीं चलती है, देखो यहाँ 12 नंबर के पेज में लास्ट पैराग्राफ, ऐसा भी पूछते कि तीरें चली आत्मा अनुभव करते हैं, वो कहा इतना करना नहीं पढ़ने गए, वो तीरें की याद कब आती है, जब करना नहीं उसका अभ्यास नहीं करना है तब, रोज के भोजन करते समय कभी तीरें चौक की याद नहीं आती कि वो तो रोज वही का वही घास खाते हैं और उतना ही उसमें अपना गुजारा कर लेते हैं, हमें तो रोज नया चेंज चाहिए, रोज सब्जी और वो रोटी सब्जी बनाओ, दाल रोटी सब्जी, तो हमारे बच्चे भी मना करेंगे, तो वो भी नया चाहते हैं कुछ, है ना। तो ये कहते कोई कहता है कि मेरी बुद्धि से ये सब नहीं बनता है, तो कहते जितना बन सके उतना तो अभ्यास करो, तुम पाप कार्य में तो प्रवीण हो, यानी वहां तो बुद्धि बराबर लगाते हो, और इस अभ्यास में कहते हो कि मेरी बुद्धि नहीं है, यह तो पापी का लक्षण है। टोडर जी साहब ऐसा बोलकर भी सामने वाले जीवों को इस ग्रंथों के प्रति अभ्यास के सम्मुख कराने चाहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि 100 चीजों में से एक भी बात, यानी हमारी भाषा में 1 या 2% भी बातें ख्याल में आ जाएगी तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग हो गया। इतनी बात के लिए महान पुण्य, पुण्य के लिए नहीं करना है, परंतु अपना ज्ञान सूक्ष्म होता है, परिणाम होता है, और हम स्वयं यथार्थता का निर्णय कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो हम तो ऐसे भी भ्रम, अपना खुद का निर्णय होना चाहिए ये बात सही है क्या नहीं है, इसका निर्णय करने के लिए पूछने की जाना नहीं पड़ेगा कि वक्ता ऐसा कहते वो वक्ता ऐसा करते, हम किसको सच माने, अभी वक्ता उनके पास जाना नहीं पड़ता है, घर घर में वक्ता आते हैं वो टीवी चैनल पर, है ना। लोग कहते हम उसमें से अच्छा ले लेंगे, अच्छा तुझे लगता है, मिथ्या तो सही वाले को क्या अच्छा है, नहीं क्या सच्चा है और क्या सही है, वो निर्णय जिसको नहीं है वो उसमें से भ्रमित होने के चांस और ज्यादा है। आगे भी लिखते हैं कि जैसे बने वैसे शास्त्र का अभ्यास करो, अन्य जीवों को जैसा बने वैसा शास्त्राभ्यास कराओ, जो जीव शास्त्राभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो। देखो करना कराना अनुमोदन सबको है, उसका फल मिलता है। पुस्तक लिखवाना, पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना इत्यादि शास्त्राभ्यास के बाह्य कारण उनका साधन करना, इनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती। परंपरा नहीं, वो तो आगे चलकर फिर उनके भी ऐसे सहज रूप से निमित्त वगैरह बन जाते हैं कि उनको ये बात मार्ग मिल जाता है। अब यहाँ हम ये कर्मकांड की बात यहाँ शुरू करेंगे। कर्मकांड इसमें तो नाम से ही पता चलता है कि कर्म की विशेष बातें इसमें बताई जाएगी। तो जीव ये कर्म है कि नहीं है, और जीव लोग तो पहले पहले आत्मा है कि नहीं यहां से शुरू करते हैं, होता तो दिखाई नहीं देता किसी को, क्योंकि हम पढ़े लिखे पढ़ते हैं लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जैसा दूसरा कोई सियाना इस विश्व में है ही नहीं। अपनी बुद्धि से फिर कुछ ना कुछ कुतर्क करना चाहते हैं। यहाँ तो कहते हैं कर्म भी है जीव भी है, और इनका अनादि से ही संबंध पाया जाता है, किसी ने मिलाया नहीं उनको एक दूसरे के साथ। इसके लिए गाथा में ये सिद्ध करते कि जीव है, क्यों है, क्योंकि मैं हूं ऐसा एहसास हर जीव को है, वो किसी को बताना नहीं पड़ता। हाँ मैं कौन हूं इसके बारे में भ्रमण है, नहीं समझे, मैं हूं इसके बारे में कोई उसके संदेह नहीं है, मैं हूं। आप कौन हो तो कोई शरीर रूप समझता है, कोई कैसे रूप समझता है, पर मैं हूं इसके बारे में कोई संदेह नहीं। तो मैं हूं ये समझ में आती है बात, ये जीव का अस्तित्व सिद्ध किया उन्होंने, ये मूल गाथा में बात बताई। और फिर कहते हैं कर्म है, इसकी सिद्धि कैसे होती है, क्योंकि हरेक जीवों की अन्य अन्य जो उसके जो ज्ञान आदि की हीनता है, वह कषायन का कार्य चल रहा है, उनके सहयोग में शरीरों की अलग अलग रचना है, इससे ये सिद्ध होता है वहां कर्मों का उदय भी, यानी कर्म भी है। तो जीव भी है और कर्म भी है, तो जीव है और कर्म है वो अनादि से कैसे पाए जाते हैं, तो मिली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कोई धातु है या सोना है, वो खदान में किस रूप से मिलता है मालूम है, उसके ओर होते हैं ना सुवर्ण पाषाण के रूप में मिलता है, उसमें बाद में उसके प्रोसेस करके उसको शुद्ध सोना बनाया जाता है। ऐसे ही जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से मिली हुई अवस्था में ही पाए जाते हैं। अब वो किस रूप से, अध्यात्मा में तो हम सीख ही रहे किस रूप से भेद ज्ञान करना क्या करना, और अनेक जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, यानी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कर्म भी है उसकी सिद्धि हो जाती है। अब हम यहाँ गाथा के आधार से ही देखते हैं, 2 नंबर की गाथा है। देखो यह जो कर्म है ना उसी को कहेंगे, कर्मों को ही प्रकृति कहते हैं। अब उसके भेद तो हम बाद में देखेंगे, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति, पहले में पहले कर्मों को सबको मिलकर प्रकृति भी कहने की पद्धति है। प्रकृति क्यों कहते हैं, तो प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। जैसे करेला कैसा है, तो कड़वा है, शक्कर मीठी है, वो मिर्च है वो तो तीखी है, तो उसका वो वैसा स्वभाव है। ऐसे ही कर्मों का क्या स्वभाव है, जीव का स्वभाव क्या है, वो यहाँ बता रहे हैं। देखो गाथा पहले पढ़ लेते फिर शुरू करते। दो नंबर की गाथा है, पेज नंबर 50। पयड़ी सील सहा हो जीवन गाणम अणाई संबंधो कणयो वले मतंबा ताण स्थितम स्वयं सिद्धम। जो अन्य कारण के बिना वस्तु का सहज स्वभाव हो, क्या कहना चाहते हैं? अन्य कारण जो निमित्त के अनुसार होता है तो उसको तो हम उसको विभाव कहेंगे। समझ में आती है बात? ये अन्य कारण के बिना स्वयं अपने से हो उसको स्वभाव कहते हैं। जैसे अग्नि का ऊर्ध्वगमन, पवन का तिर्यक गमन, जल का अधोगमन स्वभाव। ये समझते हैं ना? अग्नि ऊपर उठती है, वायु बहता है, आड़ा होता है और जल ढलान की ओर बहता है। वो उसका सहज नेचुरल उसका जो है नेचर है, उसको प्रकृति कहते हैं या शील कहते हैं या स्वभाव कहते हैं। स्वभाव है वो स्वभाववान वस्तु की अपेक्षा सहित होता है, इसलिए यह स्वभाव किसका है वह कहते हैं। तो कहते जीव और अंग योग ने जीव और कर्म का स्वभाव है। अब यहाँ कर्मों का स्वभाव क्या है और जीव का स्वभाव क्या है, वो ज्ञान दर्शन वाले स्वभाव की यहाँ बात नहीं है। क्योंकि जैसे पानी का स्वभाव शीतल है परंतु अग्नि के संयोग में गर्म होने का पानी का अपना स्वभाव है। वो अग्नि ने पानी को गर्म नहीं किया, उसमें वो आप इसमें नियम की भाषा में देखना है तो अनियत स्वभाव है उसका। तो यहाँ भी कहते हैं कि जीव और कर्म का कैसा स्वभाव है, तो कहते हैं रागादि रूप परिणाम ना जीव का स्वभाव है। आप कहेंगे उसका तो निषेध करें, है नहीं? अब कर्णानियोग के जो भाषा है वो यहाँ इसी रूप में सुनना। यहाँ तो अनेक कथन निमित्त के अधीन होकर निमित्त से कथन होता है, कथन ही निमित्त से कर सकती है, कार्य निमित्त से नहीं होता। अभिप्राय सही रख कर हम निमित्तों की भाषा में सारी बातें पढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि हाँ ये विभाव है, परंतु विभाव स्वभाव कहेंगे या अशुद्ध स्वभाव कहेंगे उसको अलग नाम देंगे यहाँ पर। जैसे स्फटिक निर्मल होता है और स्फटिक के बाजू में हमने कोई एक छोटा डॉट लगाया या कोई फूल रखा लाल रंग का, तो लाल रंग वो फूल का रंग लाल है और स्फटिक तो निर्मल है, परंतु उसके संयोग में स्फटिक स्वयं लाल रूप हो जाता है। वो झाई आती है ना उसमें लाल, वो फूल ने नहीं कराई, स्फटिक में ऐसी योग्यता है कि वो उस लाल रूप स्वयं धारण करता है। ऐसे ही ये स्फटिक की अपनी योग्यता है। ऐसे कर्म के उदय में जीव स्वयं राग रूप होता है, ये जीव का स्वभाव में ले लिया। देखो रागादि रूप परिणाम ना जीव का स्वभाव है और रागादि को उपजाना कर्म का स्वभाव है। क्या प्योरली निमित्त है, क्योंकि कर्म के कर्म में, क्योंकि जो कर्म जुदे जुदे टाइप के भी हम देखेंगे उसके नाम क्या है वगैरह, तो उनके वहां वो उदय हो रहा है तो कर्म का है। जीव और कर्म एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए है, वहां तो सारी बातें कर्म में हो रही है। प्रदेश इकट्ठे ने एक क्षेत्र वगैरह उसका संबंध है, एक ही क्षेत्र में जीव भी रहते हैं, यानी यहाँ जीव है उसी क्षेत्र में कर्म है, और जो सत्ता में कर्म है उससे कुछ नहीं लेना है। उदय क्या है, बंध क्या है, सत्ता क्या है देखेंगे हम, परंतु जो उदय रूप जो कर्म है उसकी जो अवस्था है, तो जीव अपने को उस रूप परिणमता भी है और अपने को मान लेता है, वो तो आगे की मिथ्यात्व की बात है, मानने की बात है, पर यहाँ उसका उस रूप परिणमन है। जीव स्वयं राग रूप परिणमित हो रहा है। देखो जैसे शरीर काला गोला है परंतु जीव काले या गोरे रूप परिणमित नहीं हो रहा है, परंतु कर्म की जैसी अवस्था है जीव स्वयं वैसे अपने पर्याय में वैसा परिणमन कर रहा है और मान क्या रहा है कि मैं इस रूप हूँ, वो तो कायम स्वभाव की बात मानता है। ये अध्यात्म की ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं करेंगे हम, इसके कर्म की मुख्यता से यहाँ आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी द्रव्यानुयोग के साथ विरोध नहीं है, उल्टा ये सारे आगम ग्रंथ पढ़कर द्रव्यानुयोग में इतनी दृढ़ता प्राप्त होती है, वेद विज्ञान में बहुत बल मिल जाता है। वो कैसे करना क्या है वो तो सारी चर्चा आएगी। तो कहते कि यहाँ कोई कहेगा कि एक द्रव्य के आश्रय से दूसरे द्रव्य का कार्य हुआ, तो कहते ये तो दोष आता है, क्योंकि हमने देखा कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। तो उसको कहते हैं कि जीव का और कर्म का अनादि से संबंध है। बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, ये तो एक अरूपी द्रव्य है, दूसरा रूपी, उसका कैसे बंध हो सकता है? तो जो अनादि का है उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, ये उसका उत्तर है, उसमें तर्क नहीं लगता है। अभी आगे की भी गाथा महत्व की है। तो ये हर समय नया नया कर्म, जो हम कहेंगे कर्म का बंध हो रहा है, कर्म का उदय हो रहा है, सत्ता में कर्म पड़े हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ये निश्चित हुआ कि जीव और कर्म अनादि से बंधे हुए, बंधे हुए तो वही परमाणु अनादि से अनंत काल तक नहीं होते, क्या होते हैं उन परमाणु में से कुछ छूट जाते हैं, छूट जाते हैं तो हम उसको कहेंगे उदय हो रहा है। तो ये जो उसकी जो फलदान शक्ति है ना, राग आदि उपजाने या अन्य जो जो आठ कर्मों के अलग अलग फल मिलते हैं, वो फल यानी वो निमित्तपना कब बनता है? जो उसका उदय होता है तब। जो परमाणु जीव को साथ छोड़कर अभी अकर्म रूप होने वाले हैं, छोड़कर जाते हैं उसकी बात, यानी अकर्म से अकर्म रूप हो गए, उस समय उसका निमित्त बनेगा, हम उसको कहते हैं वो उस समय उसका फल मिलता है। जीव को उसका फल कब मिलता है? जो उदय में आते हैं। उदय में आते का अर्थ क्या है? वो अभी खिर जा रहे हैं, अभी उसको हम हमारा कर्म नहीं कहेंगे, जीव का उसको कर्म नहीं कहेंगे, तब उसका फल मिल रहा है। तो उसमें उदय तो उदय हो ही रहा है, उस समय जीव क्या कर रहा है? जीव नए मोह राग द्वेष के परिणाम कर रहा है, और उसी समय क्या हो रहा है? नए कर्म और बन रहे हैं। तीन बातें एट ए टाइम हो रही है। अनादि का बंध है तो उसमें से कुछ परमाणु तो छूटेंगे तो सही, आठों कर्मों का उदय तो हर समय चल रहा है, और यह जीव अपने नए मोहराग द्वेष भी करता है और नया कर्मों का बंध भी होता है, ये तीनों ही अवस्था एक साथ बन जाती है। तो ये बंध क्यों होता है उसकी चर्चा यहां चलेगी तीसरे नंबर के गाथा में। अभी हम डायरेक्ट उसके टीका ही पढ़ेंगे। देह, देह ने शरीर, तो नाम कर्म में शरीर नाम कर्म कितने हैं? शरीर नाम कर्म पांच पांच पांच। कौन कौन से? औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कारमान शरीर। तो आहार सॉरी औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गना से बने हैं? कारमान वर्गना से। हम नाम कर्म की बात पूछ रहे हैं, शरीर किससे बनता है? आहार वर्गना से। और नाम कर्म किससे बनते हैं? कारमान वर्गना से। देखो अभी ये जो शरीर नाम का नाम कर्म है उसका उदय जो यथा उदय किसको क्या होता है उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे हम। तो उसके जो नाम कर्म जो है वहां कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित जीव, यानी योग क्यों होता है, वो योग क्या है क्या है उसकी चर्चा सब आएगी। पहले में पहले बंध क्यों होता है? तो योग के कारण परमाणु का ग्रहण होता है। कौन से परमाणु का? कर्म का भी और शरीर के परमाणु का भी। कारमान वर्गना को तो हम कर्म ग्रहण किया ऐसा कहेंगे या कर्म का बंध किया यानी उसके परमाणु को लिया ऐसा कहेंगे, और शरीर मन वाणी उच्छ्वास वगैरह के परमाणु को जो लिया जाता है उसको कहेंगे नो कर्म का ग्रहण। कर्म और नौ कर्मों का ग्रहण क्यों करता है जीव? ये सारा निमित्त का कथन है। तो जीवों में ऐसी कौन सी योग्यता कि वहां वो परमाणु आकर फिर यहाँ शरीर रूप रचना वगैरह होती है या कर्म रूप रचना होती है? पुराने कर्मों में नए कर्म आकर जुट जाते हैं, तो ये नए परमाणु लिए क्यों? तो कहते शरीर नाम कर्म के उदय में, कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में जो योग है उससे कर्म का ग्रहण होता है। औदारिकादि शरीर नाम कर्म के उदय में औदारिकादि परमाणु का ग्रहण होता है। इसको योग कहते हैं। वो योग क्या है उसकी चर्चा और चलेगी आगे। फिर से पढ़ते इसको। ये जो पांच शरीर है उस नाम के जो नाम नाम कर्म है, शरीर की बात नहीं नाम कर्म की बात है, वो नाम कर्म के उदय में कारमा शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित जीव ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्म का ग्रहण करता है। यह हम कहेंगे कारमान वर्गना को ग्रहण करके उसको कर्म रूप परिणमाता है। उसी को शॉर्ट में बताया कि कर्म को ग्रहण करता है। अवशेष शरीर नाम कर्मों के उदय से, अन्य चार शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिकादि नौ कर्मों का ग्रहण करता है। औदारिक के परमाणु है, वैक्रिक के है, तेजस के है, उच्छ्वास के है वगैरह वगैरह सभी। इसलिए उनके उदय काल में समय समय प्रति वर्गणाम का ग्रहण करता है। किसके उदय काल में? शरीर नाम कर्म के उदय में प्रति समय अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है, कर्मों का भी और मनोकर्म यानी शरीर के परमाणुओं का भी। किसके द्वारा? सर्वांगम अर्थात आत्मा के सभी प्रदेशों द्वारा ग्रहण करता है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां कर्मों और शरीर का परमाणुओं का ग्रहण न होता हो। ये कुछ पॉइंट अभी से नोट करना। क्या लिखा है? सर्वांगम कौन से ने? आत्मा के सभी प्रदेशों के द्वारा कर्म और दो कर्मों का ग्रहण होता है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां कर्म नो कर्म का ग्रहण न होता हो, उसका बंधन न होता हो। ख्याल में आई ना? दृष्टांत क्या है? तपता है पिंडम जलमिव, यानी जो हम देखते हैं ना पानी में और तपाया हुआ लोहा हम डुबोते हैं तो पानी को खींच लेता है वैसा। नीचे का पहले रफ चार नंबर की टीका। अभी कितने परमाणु एक समय में ग्रहण करता है? तो कहते अनंत, क्योंकि जो वर्गणा है जो पांच जो वर्गणा है कौन सी? आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा, तेजस वगैरह, मनोवर्गणा और कारमाणुवर्गणा, मनोवर्गणा तेजस वर्गणा कारमाणुवर्गणा। उसमें कितने परमाणु? कितने? एक वर्गणा में अनंत, और एक समय में जीव कितना ग्रहण करता है? तो अनंत वर्गणा। एक समय में जीव कितने परमाणु ग्रहण करता है भी हम कर्मों की बात करेंगे, अभी नौ कर्मों को छोड़ देते, उसमें भी उतना ही प्रमाण है, उसकी बात छोड़ देते, अभी हम कर्मों की बात करेंगे। तो एक समय में जीव कितने कर्मों को ग्रहण करता है, कितने परमाणुओं को ग्रहण करता है? तो कहते अनंत। तो अनंत कैसे है? तो अनंत तो वर्गणा ग्रहण करता है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। वो उसका अनंत का परमाणु प्रमाण भी बताया, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण इतने, ये पर्टिकुलर अनंत इतने परमाणु वो ग्रहण करता है। अब उसमें जो है क्यों ग्रहण करता है, अभी हमने देखा ना शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण करता है, उससे योग होता है, योग से परमाणु को ग्रहण करता है। यानी नंबर ऑफ परमाणु कितने ग्रहण करता है किसमें डिपेंड है? तो योग के ऊपर डिपेंड है। तो ये योग हीनाधिक होता है तो परमाणु का प्रमाण भी हीनाधिक होता है। अनंतों में वो वेरिएशन होगा, कुछ छोटा अनंत बड़ा अनंत असंख्या गुना वाला अनंत। तो योग जितना हीनाधिक होगा, दो गुना योग होगा तो दो गुना परमाणु का ग्रहण होगा, दस गुना होगा तो दस गुना परमाणु ग्रहण करेंगे। एक समय में जितने परमाणु का ग्रहण होता है उसका नाम है समय प्रबद्ध। कुछ कुछ अभी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ सीखना है। समय प्रबद्ध ने एक समय में बंधने वाले परमाणु, उसको क्या कहा? समय प्रबद्ध। उसमें परमाणु कितने हैं? तो अनंत है। अभी हम स्थूल रूप से कहेंगे अनंत है, यानी अनंत वर्गणा और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु, इतने अनंत अनंत परमाणु जीव एक एक समय में ग्रहण कर रहा है। कितना वजन लगता है बहन? नहीं लगता तो 90 किलो लगता है, अपना लगता है। उसमें जितने परमाणु नहीं उतने परमाणु कर्मों में है, सूक्ष्म परिणाम है ना, जितने शरीर के परमाणु है उससे अनंत अनंत गुणे तो कर्म के हो गए। अभी जो ये कितने लेता है वो तो देखी बात, तो हर समय कितना छोड़ता है जिसको हम उदय कहते हैं या सामान्य पड़े निर्जरित कहते हैं, वो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं, हर समय उदय रूप होकर खिरना उसको भी निर्जरा कहेंगे हम, उसके लिए निर्जरा शब्द नहीं वापरेंगे, उदय शब्द वापरेंगे। तो हर समय उदय कितने परमाणुओं का होता है? वो भी अनंत परमाणु। यानी क्या नक्की हुआ? जितने अनंत बनते हैं करीबन उतने ही अनंत हर समय खिलते हैं। तो एक समय में बंधे तो दूसरे समय कर्म से खाली होगा कि नहीं होगा? तो सत्ता में तो अनंतानंत पड़े, क्योंकि ऑलरेडी अनंतानंत परमाणु बंधे पड़े थे। हर समय जितने बनते हैं करीबन उतने ही छूट जाते, पहले में बंधे हुए थे ये जितने छूट जाते हैं, और उसका स्टॉक तो जितना का जितना बना रहता है। हमने आपको उदाहरण बताया था पहले, बहुत बार ये उदाहरण अपने यहाँ हुए ना विषय, एक बड़ा हौज है पानी से भरा हुआ है, ऊपर से पांच नलों में से पानी आ रहा है उसके अंदर गिर रहा है, और उतने ही साइज के नल नीचे किस लेवल में लगाए उतना ही बाहर जा रहा है, तो वो कब खाली होगा? कभी नहीं। ऊपर से आ रहा है उतना ही पानी जा रहा है, और वो फुल ऑफ वाटर, टैंक जो फुल ऑफ वाटर, ऐसा हमारा आपका हुआ है। क्या हो रहा है? अनादि से तो बंधन में, सत्ता में तो इतने अनंत अनंत परमाणु पड़ रहे हैं, हर समय जितने अनंत ले रहे उतने अनंत हर समय चले जा रहे हैं, परंतु वो स्टॉक तो वैसा का वैसा पड़ा है। यही यहां बच गए। देखो समय, पांच नंबर की टीका, समय समय प्रति, यानी प्रति समय एक एक कारमाण का समय प्रबद्ध, यानी जितने एक समय में बनते हैं उसका नाम है समय प्रबद्ध, जिसकी क्वांटिटी अनंत, उतना ही निर्जरित होता है, यानी उतना ही उसका खिर भी जाता है, उदय रूप होता है। अथवा सातिशय क्रिया संयुक्त आत्मा, सातिशय क्रिया वाला यानी जो औक्षण समय को प्राप्त करता है, या जो पैतृक गुण स्थान में जाता है, मुनि योग्य होता है, या अनंत अनुमति की विसर्जना करता है, ऐसे जो अलग अलग जो क्रियाएं हैं वहां उसके जो निर्जर आयने, जिसको हम कहेंगे खिरने वाले परमाणु, वो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा बढ़ते हैं, इसको कहेंगे सातिशय क्रिया युक्त आत्मा। उसका जो यानी उसका वो समय, उसका योग कैसा है? उस विशिष्ट क्रिया युक्त वाला योग है, तो उसमें तो ग्रहण करने में फर्क नहीं इतना पड़ेगा, परंतु जो खिरने वाले परमाणु अधिक प्रमाण में खिर जाएंगे, तो उसके द्वारा निर्जरा के जो 11 स्थान गुणस्थान अधिकार में कहे हैं, जो तत्वार सूत्र में भी कहे हैं, हमने तो तत्वार सूत्र के सूत्र भी याद किए हैं ना, 9वें अध्याय में है ना, हाँ ये तो सब याद होता है, समय दृष्टि श्रावक, फिर विरत, उसके बाद संयत, संयत, संयत के बाद अनंतानुबंधी का विसर्जन, उसके बाद दर्शनों की क्षपणा करने वाला, उसके बाद उपशामक, उसके बाद 11वां गुणस्थान वाला, उसके बाद क्षपक, उसके बाद क्षीण कषाय वाला, उसके बाद स्वस्थान के उली, उसके बाद समुद्रहत के उली, इसे 11 जो स्थान है, एक से दूसरा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा निर्जरा। अभी निर्जरा कैसी है, क्या है वो गुणश्रेणी, निर्जरा क्या है वो अभी अपना विषय नहीं है, हम तो अभी से सामान्य से चलेंगे। ये ब्रैकेट में जो मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर लिखे, परंतु उसकी ऑर्डर अलग है, वो तो कुछ भी नाम ऐसे लिखे हैं, जो दर्शनों की जो उपशमना करता है, प्रथम उपशम समय को प्राप्त करके जो चौथे में जाता है, उसकी जितनी निर्जरा है उससे असंख्यात गुणा निर्जरा पांचवें में जाने वाले की है, उससे असंख्यात गुणा निर्जरा मुनियों की है, उससे भी असंख्यात गुणा निर्जरा जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले, वो क्या है अभी मालूम नहीं अपने को, वो चौथे में करता है, और ये मुनि की निर्जरा उससे भी वो चौथे वाले की ज्यादा होगी, इस तरह से ये सारे स्थान है। अब यहाँ 6 नंबर की गाथा की टीका देखते हैं, यानी सामान्यपणे कर्म में क्या है, तो कर्मपना है, इतने हम कहेंगे, और वो कर्म जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म से दो भेद है। देखो यहाँ भाव कर्म यानी जीव के मोह राग द्वेष परिणाम, उसकी बात नहीं है, परमाणु इटसेल्फ वो द्रव्य जड़ है ना, तो वो जड़ में उसका अपना भाव होगा कि नहीं होगा, उसको यहाँ भाव कर्म कहा है। देखो यह जहां जो अपेक्षा है वहां वैसा समझना है, हम हमेशा द्रव्य कर्म यानी 8 कर्म, भाव कर्म यानी जीव के मोह राग द्वेष परिणाम, 9 कर्म यानी शरीर मन वाणी आदि कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, कर्म सामान्य भाव रूप कर्मत्व से एक प्रकार का है, वही कर्म द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। वहां ज्ञानावरण आदि पुद्गल द्रव्य का पिंड द्रव्य कर्म है, यानी एक्चुअली वो परमाणु, और वो पिंड में फल देने की जो शक्ति है, अभी उन्हें कोई तो शरीर उपजाने की शक्ति है, ज्ञान की हिंता करने की शक्ति है, ये निमित्त से उपचार से जो कर्म, राग आदि उपजाने की शक्ति है, उस शक्ति को क्या कहेंगे, उसको भाव कर्म, यानी कर्म का जो भाव है उसको भाव कर्म का। अथवा अथवा कहकर अभी वो उपचार से हम जीव पर ही घटित कर रहे हैं, कार्य में कारण का उपचार करने से, कारण क्या है, कर्म की शक्ति कौन सी, रागादि उपजाने की, यानी रागादि उद्गल का भाव है, और उससे कार्य क्या हो रहा है, जीव रागादि रूप परिणमित हो रहा है, तो उसको भी भाव कर्म कहेंगे। ये कहते कार्य में कारण का उपचार से उस शक्ति से उत्पन्न हुए अज्ञानादि और क्रोधादि भी भाव कर्म है, जिसको हम हमेशा भाव कर्म कहकर समझते जानते भी हैं। अब ये जो कर्म, जो कर्म कर्म कह रहे हैं, सामान्य से कर्म कहने से सब कुछ उसमें आ गए, उसी में अगर हम भेद करेंगे, उसके नाम लेकर अगर बोलेंगे तो आठ भेद होते हैं, जिसको हम कहते हैं आठ द्रव्य कर्म, जो ज्ञान आवरण आदि जो नाम है वो आठ कर्म है, और उसमें और भी भेद करेंगे तो 148 भी प्रकृतियां होती है, उत्तर प्रकृति जिसको कम कहेंगे, और डिटेल में भेद करेंगे तो जिसे असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, वो तो हम हमारे बुद्धि के बाहर है ना, कल्पना के भी बाहर है, परंतु केवली भगवान ने उनके सारे ये असंख्यात लोक प्रमाण भेद जाने, असंख्यात भेद है उसके जुदे जुदे। अभी उसके जो हम नाम देखेंगे, क्योंकि हमें कर्म क्या है मालूम नहीं है, उनके नाम क्या है मालूम नहीं, उसके कार्य क्या मालूम नहीं है, कहाँ बनते हैं, कहाँ बंधना रुकता है, वो सब भी बातें इसमें आने वाली है। तो नाम तो सबने बहुत बार सुने हैं ना, मैं एक एक नाम लूंगी, आपको रिपीट करना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आप कहेंगे कुछ उलट पुलट कर दिया आपने। अगर हम घाती और अघाती भेद करेंगे तो घाती कर्म में हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय को गिनेंगे, और अघाती कर्मों में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र को गिनेंगे। तो हमने कुछ यहाँ उल्टा पुलटा करके आपको बताया है ना, वेदनीय को पहले बता दिया, उसका कुछ प्रयोजन है। ये प्रयोजन क्या है, वो जो हम कर्मों का बंटवारा या आदि होते हैं ना उसमें, क्योंकि जो जीव विपाक, जीव में जिसका फल बनता है, वेदनीय का फल अभी हमारे आपके उसमें क्या बनता है, मोहिनी के उदय में वेदनीय क्या कार्य कर रहा है, साता आसाता ने जीव को सुख दुख रूप, कौन सा सुख, अतीन्द्रिय सुख नहीं, इंद्रिय जनित सुख दुख का उसको वेदन करता है, और उसकी मुख्यता है जीव को, इसलिए वेदनीय का नाम पहले लेते हैं। ये बात आएगी आगे चलकर, जब उसका इस तरह से हमने गिना, उसको वेदनीय को तीसरा नंबर दिया है, अंतराय को लास्ट में रखा है, और जब घाती और अघाती ऐसी चर्चा करेंगे तो जैसे बोर्ड पर भी लिखा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, और अघाती में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये तो नाम सबको मालूम है। अब इसको घाती कर्म क्यों कहना, स्वभाव का घात करता है, गुणों का करता है कि पर्याय का करता है कि द्रव्य का करता है, गुणों का घात तो गुण रहित हो जाएगा, पर्याय का घात तो पर्याय भी ना हो जाएगा द्रव्य नहीं। घात तो करता ही लिखा है ना, और ऐसा कथन भी आता है ज्ञान का घात करता है। देखो ये तो निमित्त की बात है, यहाँ ऐसा उदय होता है और जीव स्वयं अपनी योग्यता से हीन ज्ञान रूप परिणमता है, तो वहां ज्ञानावरण का उदय तो उपचार से उस पर आरोप आता है। ये कर्म को हम घाती कर्म कहेंगे, क्योंकि वो जीव के स्वभाव का घात करते हैं। स्वभाव क्या है हमारा आपका, तो केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, वो पर्याय में प्रकट नहीं है, क्यों नहीं है, अपने अपराध से। फिर भी यहाँ निमित्त रूप से क्या है, कर्मों की कैसी स्थिति है, तो उसको ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, इस तरह से उसको कहेंगे स्वभाव का घात करते हैं। वैसे तो महाबंध में तो कहा ये आघाती है ना, उसको भी कथनचित घाती कर दिया, क्यों, वो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं, परंतु सामान्य से ये चार घाती कर्म है और बाकी चार अघाती कर्म है। इसलिए जो जो ज्ञान और दर्शन वगैरह जीव का स्वभाव है और उसका स्वभाव नहीं प्रकट होने देता है, इसलिए उसको घात करते ऐसा कहते हैं। अभी उसमें भी ये जो उसका जो कर्म है, कुछ तो उसका फल उदय में जो फल मिलता है, कुछ तो जीव के भावों के साथ होता है, कुछ तो पुद्गल में शरीर आदि में उसका फल मिलता है, कुछ तो भव में है, आयु कितनी लंबी रहेगी उसमें उसका फल मिलता है, और कुछ का क्षेत्र है जो एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, क्षेत्र विपाकी जिसको कहेंगे, अनुपूर्वी हो गए उसका वहां फल मिलता है। तो देखो थोड़ी हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि हिसाब हम कैसा करते हैं, क्योंकि बाकी तो लौकिक में बहुत होशियार है, क्यों चेतन? आप जो कुछ कमाई होती है किसके खाते में जमा करते हो? तो कहते नहीं, पिताजी के भी नहीं और वाइफ के भी नहीं, हम तो अपने खाते में जमा करते हैं ना, भाई के भी नहीं। तो यहाँ तो हम क्या करते हैं, या अनादि से इस जीव की भूल क्या हो रही है? एक तो उसने शरीर को मैं हूं मान लिया, और जो कुछ शुभाशुभ भाव, अभी अशुभ से बचना है और शुभ करना है, और शुभ करते करते मोक्ष होगा ऐसा मानता है। तो शुभ से बंद होता है क्या? बंद होता है, बंद होता है। हम थोड़ा यहाँ हिसाब लगाते हैं क्योंकि ये बात बाद में भी आने वाली है। ये जो यहाँ धाती कर्म लिखे हैं ना, ज्ञानावरण के पांच है, ये कौन से पांच वो हम गिनेंगे? दर्शनावरण के नौ है, मोनी के तीन और पच्चीस, और अंतराय के पांच, ये सैतालीस है। और इसमें भी वेदनीय में जो साता साता है, आयु में भी चार है, देवायु नरकायु मनुष्य तीन चार, नाम कर्म में भी बहुत सारे प्राणवे भेद है, और गोत्र भी उच्च गोत्र नीच गोत्र है। तो मेरा ये सवाल है, इसमें कितनी पुण्य प्रकृतियां हैं? जिसका अभ्यास है वो बता दे, जिसने कभी सुना नहीं है ना, हाँ, एक भी पुण्य प्रकृति नहीं है, सभी पाप होते हैं। तो पुण्य पाप का भेद कहाँ है? घाती कर्मों में, अघाती कर्मों में पुण्य और पाप का भेद है। जैसे साता है वो पुण्य प्रकृति है, असाता पाप प्रकृति वगैरह वगैरह सब इसमें लगा देगा, वो हम गिनेंगे बाद में कौन कौन सी है। आपकी कोई प्रकृति बाकी नहीं रखेंगे। तो एक ये भी नियम सुन लो, उदय तो आठों कर्मों का निरंतर चल रहा है, और बंध आयु का कभी कभी होता है। आयु का बंध कभी कभी होता है, परंतु बाकी सात कर्म कौन से? सभी घाती कर्म, वेदनीय, नाम और गोत्र हर समय बनते हैं। तो अभी दशलक्षण चल रहे हैं ना, हम पूजा भी कर रहे हैं, अभी स्वाध्याय भी करेंगे, दिन में छः छः घंटे इतना शुभ भाव करेंगे। तो इसमें से कौन कौन से कर्म बंधेंगे? अभी आयु को छोड़ दो ना, तो सात तो बंधेंगे ना। तो ये जो बन रहे हैं इसमें से कितना पुण्य बन रहा है? इसमें इसमें पुण्य है ही नहीं कुछ, ये सारे पाप रूप है। तो ये बंध रही कि नहीं बंध रही? बंध रही। तो पुण्य भी बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बंधेगा। किसमें बंधेगा? तो जीव को क्या मिला? ये तो सारे जीव को डायरेक्ट निमित्तपना बनने वाले, जीव के गुणों का हम कहेंगे घात करने वाले, तो सारे वो बंध ही रहे। पुण्य करने से वो सारे घात रूप तो बंध ही रहे। डिफरेंस कहाँ पड़ा? आघाती में पड़ा। आघाती का फल किसको मिलेगा? मेजोरिटी तो पुद्गल में चला जाएगा, नाम कर्म शरीर की रचना हो जाएगी, उच्च नीच गोत्र मिलेगा। साता असाता वेदनीय में जीव ही स्वयं ऐसे, देखो साता असाता वेदनीय से कोई आपको डायरेक्ट उसका कुछ मिलता नहीं है, नहीं समझे? अभी हमने ठंड के मौसम में पंखा लगाया, तो पंखे का चलना साता का उदय है क्या असाता का? ये संयोग में कोई साता साता नहीं होता, जीव उसका लक्ष्य करके, लक्ष्य क्यों करता है? मोहनी के उदय, ये सारा अनिष्ट इष्टता मानता है और इसका लक्ष्य करके स्वयं सुखी दुखी होता है। ये सारी उसकी कल्पना है, कल्पना जाल में वो सब सुखी दुखी हो रहा है। तो वो भी सारे जो कुछ वो जिसका लक्ष्य करता है वो तो मोहनी तो उसका बंधा ही बंधा है, और भले संयोगों में कुछ अनुकूल या प्रतिकूल हो जाए, तो जीव को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शरीर की रचना हुई, जो कुछ काली गोरी जो कुछ हुई वो शरीर में हुई, जीव को कुछ नहीं मिला। और गोत्र में उच्च उच्च हो तो जीव को कुछ नहीं मिला। तो यही मैंने आपको पूछा था, आपकी कमाई जो है किसके खाते में जमा करते हो? ये सारे पुद्गल के खाते में जमा हो रहा है, शरीर के खाते में जमा हो रहा है, जीव को कुछ नहीं मिला उसमें। उल्टा तो ऐसा पुण्य के उदय में उसका लक्ष्य कर करके जीव अपना स्वरूप भूल कर और उसे में रचा बचा रहता है। ये अनुकूलता ज्यादा बाधक है, नहीं समझे? प्रतिकूलता में कैसा भी करके यहाँ आने की पूरी कोशिश करते हैं ना लोग, अनुकूलता में वहीं पर रचे बचे रहेंगे। ये कह रही है जो किसमें उसका फल मिलता है, हम विचार नहीं करते ना क्या करें? पुण्य होता है जिस भूमिका में, वैसा होगा भी। टोटोमल जी ने इतने ग्रंथों की रचना की या आचार्य ने इतनी की, तो उनके तो पुण्य परिणाम हुए कि नहीं हुए, परंतु वो करने जैसा ऐसा नहीं मान रहे थे। डिफरेंस समझ में आती है बात? यहाँ कोई किसी कार्य का नहीं निषेध, परंतु हम क्या कर रहे हैं उसका फल क्या होता है तो हमको नक्की तो करना है, किसमें क्या जा रहा है उसका हिसाब। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं जो हमने अभी देखा था, ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है, जीव का ज्ञान कैसा है, तो केवल ज्ञान उसका स्वभाव है, वो भी प्रकट नहीं हो रहा है, ये ज्ञानावरण का कार्य हो रहा है। दर्शनावरण में जीव का केवल दर्शन स्वभाव है, दर्शन और ज्ञान समझते ना, ज्ञान है जानने रूप जो है पदार्थों को जानना है ना, उसके विशेषताओं को पहचानता है पदार्थों को। अभी ये माइक है और ये टेबल है और ये पुस्तक है, हमने जाना है नहीं क्या कि उसकी विशेषताओं को जानकर हमने उसको पृथक पृथक ये भिन्न चीज है पहचान ली, ये उसका कार्य है। अभी दर्शन में क्या होता है, सामान्य अवलोकन होता है, बस सत्ता मात्र का ग्रहण होता है, ये ज्ञान हमारा आपका ज्ञान के पूर्व में ये हो जाता है और केवल भगवान का ही उपद होता है। तो ये दर्शन का कार्य है, ये दर्शनावरण वो नहीं होने देता, ऐसा हम कहेंगे। या जो पांच प्रकार की जो निद्रा है वो भी दर्शनावरण में आती है। ये पांच नाम तो आपको समझ में, जैसे पांच जो हम ज्ञान के भेद करते हैं ना, तो ज्ञान के आवरण के भी उतने भेद है, जैसे मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण के भी जो नौ भेद बताए उसमें भी जो एक तो पांच तो निद्रा संबंधी है, स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला निद्रा और प्रश्ला, फिर चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन आवरण, चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण केवल दर्शनावरण, ये उसके अलग अलग भेद है। मोहिनी में आपने सुने ही होंगे दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में एक है मिथ्यात्व और दूसरे दोनों कौन से है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। यहाँ बंधने वाली में मिथ्यात्व प्रकृति है, बाद में जो दूसरी दो प्रकृति बाद में तैयार होती है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। चारित्र मोहिनी के तो नाम आपने सुने हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मायालोभ, संज्वलन क्रोध मान मायालोभ, ये चार तक 16 और नौ नौ कषाय, हास्य रति अरति शोक भय निपुसा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुसक। अभी ये कर्मों के नाम थोड़े परिचित हो रहे हैं उससे या याद करना अच्छा है, क्योंकि ये कहाँ कौन से बनते हैं, कहाँ कौन से उदय रूप होकर रुक जाते हैं, वो सारी चर्चा आने वाली है, क्रम से आएगी। परंतु ये नाम से हम अगर परिचित नहीं है तो क्या चल रहा है पता नहीं, कुछ तो हो रहा है ऐसा लगता है। ये मोक्ष मार्ग इतना अपने लिए अनुकूल है, इसमें से कितने अति अप्रशस्त प्रकृतियां जो है वो बंधना तो रुकती है, उसका उदय भी नहीं होगा। जो हमने आज तक बांधे हुए है जरूर नहीं आपको वो भोगना पड़ेगा, उसमें क्या ठीक हो जाते हैं, कैसे अन्य रूप होकर उदय में आकर खिलते उसकी बात है। यानी मोक्ष मार्ग पूरा इसे सामने रखे हुए के समान क्लियर हो जाता है, इतनी दृढ़ता पूर्वक आपको एक ख्याल में आ जाती है। जो कर्म बंध रहे थे अनादि से क्या हो रहा था, कर्मों का उदय हो रहा है, उदय हो रहा है तो जीव उस रूप परिणमित होता है राग द्वेष और नया बंध हो रहा है, तो ये छूटे कैसे, ये तो चल ही रहा है ना, ऐसा बंध है या उदय, जीव के परिणाम है उदय है, तो इसमें से कोई छूटने का रास्ता तो होना ही चाहिए। अनंत जो केवली हो गए हैं, सिद्ध भगवान हुए हैं, उन्होंने इसी में से रास्ता कुछ आत्मा का अनुभव करके अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया है, तो इसमें से छूटने का मार्ग अवश्य है। और जो अनंत जीवों ने किया है वो सरल भी है, ऐसा कठिन है नहीं उसको जैसा समझ के रखा है जीवों ने। तो कहते कि इसमें से छुटकने का मार्ग है, तो ये जब मार्ग नहीं मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है, जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तब से ही इन कर्मों में इतनी उथल पुथल हो जाती है, भले बंधे है कुरु में पाप कर्म जो कुछ जैसे जिस अवस्था में, परंतु उसमें से कितने ही क्या क्या होकर उसमें उथल पुथल होती है, कैसी बनती है, सब जीव के फेवरेबल बातें होती है। एक सब इतना कर्म का झमेला क्यों सुनना है, क्योंकि उस रूप मैं नहीं हूं ये समझना है। हमने तो उसके जो फल है उस रूप ही अपने को समझ कर रखा है, उससे हमें भेद ज्ञान किस तरह से करना उसकी तो चर्चा चलेगी। तो अभी यह हम ये जो बातें यहाँ कर्मों की बात करते कर रहे थे उसकी विशेष चर्चा, और आगे उसके नाम भी हम अगर देखना है नाम कर्म के भी नाम देखेंगे उसको सीखेंगे, तो उसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे 15 मिनट के, 10-15 मिनट के बाद। अभी यही रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की।